على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي العظيم. سورة مباركة اقرأ جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں عرض کر چکا کہ اس ایک سورے کی تفسیر اگر لکھی جائے تاویل کے ساتھ تو آپ پوری ایک انسائیکلوپیڈیا لکھ سکتے ہیں. اور اس میں بعض الفاظ و بعض کلمات ایسے ہیں جو بہت فکر انگیز ہیں، اور لوگوں نے عام طور پر اس کا حق ادا نہیں کیا. مثلا اب جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، حق سبحانہ و تعالیٰ نے، اب یہ باتیں تو بہت عام ہیں اور وہ اپنی جگہ مستحکم ہیں کہ پہلی ہی وحی میں پڑھنے کا حکم ہے تو مسلمانوں کو علم سے جڑا رہنا چاہیے. یہ عام بات ہے، سبھی کہتے ہیں اور اس میں اپنا ایک وزن ہے. اقرأ باسم ربك الذي خلق، یہاں پہ یہ بات ضرور ہے کہ مسلمان پڑھیں، ہر علم حاصل کریں، جو بھی علم حاصل کریں، سائنس پڑھیں، ادب پڑھیں، سیاست پڑھیں، پولیٹیکل سائنس، ہیومینٹیز پڑھیں، نیچرل سائنسز پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، پڑھیں بخاطر خدا. اقرأ باسم ربک الذی خلق، رب کی خاطر پڑھو، اپنی خاطر نہیں، نفس کی خاطر نہیں، دنیا کی خاطر نہیں. بس اگر یہ ڈائمنشن پیدا ہو جائے، یہ نیت پیدا ہو جائے، تو دیکھو تمہاری پڑھائی میں کتنی برکت ہوگی. یہ بجائے خود بہت طویل بحث ہے. ایجوکیشنل ایتھکس، تعلیمی اخلاقیات، فلسفہ تعلیم کے ساتھ، یہ اس دور میں میں کر رہا ہوں جبکہ تعلیم کا سارا فلسفہ لوگ غارت کر چکے ہیں. اب صرف اور صرف تعلیم ہوتی ہے دنیا پرستی کے لیے، جاب اورینٹڈ ٹریننگ ہوتی ہے، ایجوکیشن تو ہوتی ہی نہیں. دیر از نو ایجوکیشن، نو مور. ہر جگہ صرف جاب اورینٹڈ ٹریننگز ہیں، دیٹس آل. دنیا کے چند سرمایہ دار ہیں جو آپ سب کو، تمام انسانوں کو، اپنے اپنے منصوبوں کا، اپنی اپنی کمپنیوں کا، اپنی اپنی فیکٹریوں کا ملازم تربیت کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں. अपनी अपनी मशीनों के पुर्जे तैयार करते हैं। इंसानों को बहैसियत इंसान परवान चढ़ाने वाली तालीम इस वक्त रूए ज़मीन पर वजूद नहीं रखती है। आम यूनिवर्सिटीज़ में धोखे में हैं लोग, फरेब में मुबतला है। इल्म रूह है इंसान की ग़िज़ा है, ग़िज़ा रूह है। इल्म और इल्म के नतीजे में पैदा होने वाला अमल, ये दो परे परवाज़ हैं जिनसे इंसान सफ़रे मेराज तय कर सकता है, अपनी बुलंदी का सफ़र। इल्म और अमल, या इल्म और इश्क, ये दो पर हैं जिससे इंसान अपने कमालात तक, मुकद्दर कमालात तक, अल्लाह ने इंसान की किस्मत में कमालात मुकद्दर किए हैं। मुकद्दर किसी का ख़राब नहीं है, इंसान अपनी तदबीर की ख़राबी से, अपने सूए इख्तियार से अपना अंजाम बिगाड़ लेता है, या अपना हाल बिगाड़ लेता है, या अपना मुस्तकबिल तबाह कर लेता है। बहरहाल, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। अब मैं आज पढ़ो तर्जमा इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें, इस ज़ाहरी तफसीर में हर इंसान के लिए पैगाम है, और अहम पैगाम। इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, कौन रब जिसने पैदा किया, और पैदा किया खलक अल इंसान मिन अलक़, एक ख़ास ताल्लुक से। अगर अलग का तर्जमा करें, ख़ास ताल्लुक से इंसान को पैदा किया है, तो सोचिए कि मानवियत कहाँ से कहाँ चली जाएगी। ताल्लुक़ ख़ातिर मशीयत इंसान से वाबस्ता है, इस इंसान से अल्लाह सुबहाना हुआ ताला को इस कायनात में वो काम लेने हैं जो काम न पहाड़ कर सकते हैं, न ज़मीन कर सकती है, न आसमान कर सकते हैं, न फरिश्ते कर सकते हैं, न जिन कर सकते हैं, जो काम इंसान कर सकता है। इंसान गौहरे मकसूदे कारखाने कुदरत, गौहरे शाहवारे सदफे खिलकत, خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم, पढ़ो तुम्हारा रब बहुत करीम है, अक्रम है। यहाँ पर किस कदर गहराइयाँ हैं, ये इल्म का तमाम फैज़ान करम इलाही है, करम इलाही का तरशह है। पढ़ो, अल्लाह करीम है, करीम है, वो अपने असरार, अपने राज, रमूज, फितरत की गहराइयाँ तुम्हारे ऊपर आशकारा करता रहेगा। खुदा के लिए पढ़ो, खुदा के लिए पढ़ो में भी दो पहलू हैं। खुदा के लिए पढ़ो तंबीह है, खुदा के लिए पढ़ो, ठीक है, वाज़े है, खुदा के लिए पढ़ो। खुदा करीम है, अकरम है, अकरमुल अकरमीन, इक़रा व रब्बुकल अकरम, जिसने अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने क़लम के वसीले से इल्म अता किया। और क्या, कैसा इल्म था? अल्लमा इंसान मालम यालम, इंसान को वो इल्म अता किया जो इंसान जानता नहीं था। अब ये सादा तौर पे लोग तर्जमा करके गुजर जाते हैं, हैं? यहाँ पे ठहर के कितनी गहराई है सोचने के लिए। क्या इंसान कुछ जानता था और कुछ नहीं जानता था? तो अल्लाह ने वो भी अपने फैजान से, अपने लुत्फ से, अपने करम से बता दिया जो इंसान नहीं जानता था। क्या ऐसा है? वाज़े है, अल्लज़ी علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو تعلیم کی وہ باتیں جو انسان نہیں جانتا تھا. یہاں پر جس ایک لفظ پہ بطور خاص ٹھہر کر میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اشارہ ہے، تحقیق کا دروازہ ہے. قلم سے کیا مراد ہے؟ یہ قلم جو ہم لوگ جیب میں رکھ کے پھرتے ہیں، جس سے لکھتے ہیں، یہی مراد ہے؟ لفظ قلم کی تحقیق میں ابھی تک کوتاہیاں رہی ہیں. اور علوم القرآن کے ضمن میں علم غریب القرآن، یعنی قرآن مجید کے غریب و مشکل الفاظ کی ڈکشنری لکھنے کے سلسلے میں جو نام سب سے نمایاں اور اہم ہے، ریفرنس کے طور پر ہمیشہ آتا ہے، علامہ راغب اصفہانی. تو علامہ راغب اصفہانی نے جو کتاب مفردات قرآن لکھی ہے، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا، اس کلمے کا حق ادا نہیں ہو پایا. ابن فارس نے، جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں اور عموماً تحقیق معانی اور تحقیق الفاظ میں ان کی کتاب کی طرف رجوع کرتا ہوں، کتاب مقاییس، معجم مقاییس اللغہ، تو اس میں یعنی علم اشتقاق میں سب سے مستند اور سب سے اہم اب تک کی لکھی جانے والی تمام قدیم و جدید کتابوں میں ابن فارس کی کتاب ہے، معجم مقاییس اللغہ. اس میں انہوں نے کہا ہے قاف لام میم اصل صحیح يدل علی التسویہ، کسی چیز کو کھرچ کر یا تراش کر برابر کرنا، تسویہ، یہ معنی انہوں نے بنیادی بتائے اس مادے کے، قاف لام میم قلم. تو یہاں بنیادی معنی کیا ہوئے؟ تسویہ، یعنی کہیں کوئی چیز ابھری ہوئی ہے، کہیں کوئی چیز دبی ہوئی ہے. جیسے وہ نئے ہوتی ہے نا، قلم جس سے بنایا جاتا تھا پہلے وہ نئے ہوتی تھی، وہ اس کی شاخ لے لیتے تھے اور اس کو تراش کے قلم بناتے تھے. تو تراشنے میں اس کو برابر کرنا کا پہلو پیدا، تسویہ یعنی برابر کرنا. راغب نے تسویہ کا لفظ نہیں استعمال کیا، القص کاٹنا، کسی سخت چیز کا کاٹ کر جدا کرنا، اس کو انہوں نے قص کاٹنا. یہ دونوں ظاہری معانی ہیں، لیکن وہ معنی جو یہاں مراد ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان دونوں تفسیروں سے مکمل نہیں ہوتے. اہل لغت کے استعمالات میں اور کھنگالیں کہ کن کن معانی میں اہل لغت استعمال کرتے ہیں اسے، اور پھر لازمی طور پر یہ قص اور تسویہ میں بھی وہ معنی پائے جاتے ہیں، یعنی اس معنی کا انتزاع ممکن ہے، وہ معنی منتزع ہوتے ہیں اور وہ مفہوم لازماً ذہن میں آتا ہے. اب جلدی سے بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں ایک مثال دے دوں، جو ہمارے معاشرے میں، ہندوستان پاکستان میں بھی اس پرانے معاشرے میں رائج تھی، اب بھی ہوگی پرانی جگہوں پر، اور ایران اور عرب میں بھی رائج تھی. فارسی میں تو لفظ قلم کے ساتھ اتنے محاورے ہیں، عمدہ عمدہ اتنے محاورے ہیں کہ جس کی حد نہیں، اور بہت سے محاورے، پتہ نہیں کیوں ہمارے اردو والوں نے بہت سی چیزیں فارسی سے لی لیکن یہ محاورے نہیں لیے سب کے سب. जब कई चीज़ें हों, बहुत सी चीज़ें हों और हर एक का ज़िक्र मकसूद हो, तो फ़ारसी में मुहावरा कलम ब कलम ज़िक्र करदन, यानी फहरिस्त वार एक एक करके सबको ज़िक्र करना, कलम ब कलम। कदम ब कदम तो हमारे यहाँ है, कलम ब कलम नहीं है, शायद लोहो कलम से शगफ कम है। कलम ब कलम ज़िक्र करदन, या कलम ब कलम हिसाब करदन, किसी चीज़ को हिसाब करना है, गिनना है, हिसाब करना है, अकाउंटेंसी में ये जो खाता बही लिखने में, चीज़ों को जब शुमार करते थे। अब ये बिल्कुल अवामुन्नास भी इस मुहावरे से वाकिफ़ हैं कि आप किसी के यहाँ से कोई चीज़ लाए हैं, वो पहले हिसाब चलते थे कि भाई महीने महीने पे हिसाब हो जाएगा, या साल ब साल हिसाब हो जाएगा, या छः छः महीने पे हिसाब हो जाएगा, जिसको जैसे तनख्वाह मिलती थी। अब गालिब को छः छः महीने पे तनख्वाह मिलती थी तो छः छः महीने पे वो हिसाब करते थे। तो वो अगर मुख्तसरन बात करनी हो तो हिसाब लेते देते वक्त, हिसाब करते वक्त, कर्ज चुकाते वक्त होता था कि कर्ज खा कहता था इतने कलम सामान आए हैं आपके यहाँ, जुमला ये होता है, यानी आखिर में हिसाब कैपिटल ये होता है। कलम के मानी है कितनी चीज़ें, यानी आइटमाइज करना चीज़ों को, उसको कलम ब कलम, ठीक है ना, एक एक आइटम का जिक्र करना कलम ब कलम, वाजे हुई बात है। यहाँ पर इन तमाम इस्तेमालात को, यानी और भी, तो वक्त की महदूदियत से मैं तमाम इस्तेमालात अहले अरब के भी और अहले फ़ारस के और इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, कि दरअसल कलम अगर आप ये ज़ाहरी और मादी मानी से बुलंद होकर तस्विये और कस और काटना, इसी से दरख्तों की शाख लगाते हैं तो उसे भी कलम कहते हैं, ठीक है ना। उर्दू में ये लिखने वाला जो कलम है ये मुज़क्कर है, और वो जो दरख्त की शाख जैसे गुलाब की शाख लगाते हैं कलम, वो मुअन्नस है, ठीक है। इस्तेमाल तज़किर व तानीस में बड़ी लताफतें हैं। तो दरअसल कलम वो कुव्वते तमीज़ है जो चीज़ों को क्लासिफाई करती है, चीज़ों की तसनीफ, तनवीर और तालीफ, तकसीम और तहलील। मंतक में पूरा चैप्टर है तकसीम और तहलील का, इल्म मंतक में, लॉजिक में, ठीक है। इल्म मंतक में जो तसनीफ और तहलील का, तकसीम और तहलील का चैप्टर है तारीफ, कस्ब तारीफ बतवसुत तकसीम। ये तकसीम कैसे करते हैं आप, किस कुव्वत से? ये कुव्वत तमीज़ है जो हक सुबहाना हुआ ताला ने अता की है आपको, आपकी अक्ल और आपकी रूह को, आपकी रूह और आपकी अक्ल का एक डायमेंशन है, एक कुव्वत है आपके पास, कुव्वत तमीज़, जिससे आप क्लासिफाई करते हैं चीज़ों को। ये जो फ़लसफ़े में और मंतिक में कैटेगराइज किया है आपने तमाम चीज़ों को, कैटेगरीज मुकर्रर की हैं अजनास की, अजनास आलिया और आराव की, जवाहिर और आराव की, ये सब जो है ये कुव्वत तमीज़ आपको अता की है हक सुबहाना हुआ ताला ने, और इसी बिना पर जवाहिर और आराव की तकसीम की, तमीज़ पैदा की, शनाख्त की, और उसके बाद उसकी तकसीम की और तहलील किया और फिर तालीफ किया और तसनीफ यानी क्लासिफाई किया, और उसके बाद आपने जिन्स और फसल और खासा और आरद, इन सब से आपने मदद लेकर आपने चीज़ों की तारीफ़ें की, चीज़ों को डिफ़ाइन किया। जब आप चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें क्लैरिटी आपके इल्म में और थॉट में पैदा होती है। ये पूरा अमल जिस कुव्वत की बिना पर आप करते हैं, उस कुव्वत का नाम है अल कलम। यह आपको सोचना पड़ेगा। हक सुबहाना हुआ ताला ने यह थोड़ी किया कि आपके हाथ में कलम थमा दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कलम थमाया कि लो कलम लिखो, कागज़ उठाओ लिखो, मैं जो कुछ इमला कर रहा हूँ ये तो नहीं हुआ ना। तो फिर इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमा अल इंसान मा लम या आलम, जो इंसान नहीं जानता था। मंतिक में क्या होता है? मालूम से मजहूल तक का सफ़र, जो आप जानते हैं उसे बेस बना के उस चीज़ को जान लेते हैं जो आप नहीं जानते, मजहूल। ठीक है ना, वाजे हुई बात। तो अब मसलन यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, दरवाज़ा बंद है, आप हमारा दर्स समाअत फरमा रहे हैं, ये दरवाजे से छन छन के रोशनी आ रही है, सूरज तो हम नहीं देख रहे हैं इन आँखों से, तो इस रोशनी को देखकर और हम कह सकते हैं कसम खा के सूरज निकला हुआ है। ठीक है ना, तो जो चीज़ हमें नहीं मा, ये मामूली सी मिसाल है बच्चों वाली, उससे भी शायद मामूली जो चीज़ मालूम है, मालूमात को मुरतब करके जो चीज़ नहीं मालूम है उसको अच्छी तरह मालूम कर लेना, कशफ कर लेना, डिस्कवर कर लेना, ये है कुव्वत है अल कलम। वाजे हो रही है बात, हक सुभान। अब जाहिर है कि ये जाहिरी कलम तो ये बहुत ही मामूली वसीला है इल्म का हासिल करने और मुंतकिल करने का, वाजे। इस कलम में तो ये कलम जिसके हाथ में चला जाए उसकी बोली बोलने लगता है, लेकिन वो कलम कुव्वते तमीज कभी झूठ नहीं बोलती। ये कलम तो गैर मासूम को मासूम और मासूम को खताकार साबित कर देता है, डिपेंड करता है किसके हाथ में है। लेकिन वो कलम, हाँ यहां पर और भी पहलू हैं, मसलन जब वही की बात होती है कि जिब्राइल ने इसराफील से लिया और इसराफील ने मिकाइल से लिया और मिकाइल ने लौह से लिया और लौह ने कलम से लिया, ये सब इस्तिलाहें हैं। जैसे आपकी फिलॉसफी में, फिलॉसफी की अपनी टर्मिनोलॉजी है, इसी तरह दीनियाती हकायक, इलाहियाती हकायक और कुरानी हकायक की अपनी टर्मिनोलॉजी है, उसकी अपनी अपनी डिफिनेशंस हैं। और एक जहत वो भी है कि जहां रिवायत में आया है कि दरअसल लौह कलम से मुराद दो फरिश्ते हैं, लौह ये नहीं कि वो सोने की या चांदी की या याकूत की कोई तख्ती है और कलम जो है वो लिखने का कोई वसीला है। लौह एक फरिश्ते का नाम है, मलक का नाम है, और कलम एक मलक का नाम है। ये मलक किसे कहते हैं? मलक और मलका से क्या ताल्लुक है? मलाइका दरअसल कुव्वतें हैं, अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ कुव्वतों के पैकर हैं, जिन तमाम कुव्वतों को इंसान के लिए हक सुभान हुआ ताला ने मुसख़्खर फरमाया है। सजदे मलाइका के क्या मानी होते हैं? यानी तमाम कुव्वतों को हक सुभान हुआ ताला ने अपनी इस महबूब मखलूक के लिए मुसख़्खर कर दिया है कि इंसान जिस कुव्वत से जब चाहे फ़ायदा ले, फ़ायदा उठाए, काम ले। सआदतमंद है वो इंसान जो तमाम कुव्वतों से अल्लाह की खातिर काम ले, और शकी है वो इंसान जो अल्लाह की दी हुई कुव्वतों से अपने नफ्स के लिए काम ले या खुदा से सरकशी करे और बगावत करे। तो ये एक अहम बहस है कि कलम से मुराद क्या है। मैं समझता हूँ कि आज तक जितनी किताबें लिखी गई हैं गरीबुल कुरान के मौजू पर, यानी कुरान मजीद के मुश्किल अल्फाज की तशरीह, अव्वल पहली बात तो ये कि इसको मुश्किल लफ्ज नहीं समझा गया कलम सामने का लफ्ज है। हालांकि आप सोचिए कि उस माशरे में जब कुरान नाजिल हुआ था तो किताबत इतनी आम नहीं थी अरब में, लेकिन ये एक अलग चैप्टर है कि उस अरब माशरे में जिसके लिए मशहूर है कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और लिखने की इतनी रस्म नहीं थी, खुद इस वसीले के लिए, वसीला लिखाने लिखने का किताबत, इस वसीले के लिए कितने अल्फाज अरबी जबान में मौजूद हैं क्लासिकी अरबी में, और तहरीर के लिए कितने अल्फाज हैं, और किताब या मुसहफ के लिए कितने अल्फाज हैं। इन अल्फाज का तनव्वो और तअद्दुद देख कर हैरत होती है कि जिस माशरे को हम समझते हैं कि अनपढ़ माशरा था, उसमें लिखने पढ़ने के वसाइल के लिए इतने वर्ड्स, इतने अल्फाज, इतनी ताबीरात कैसे वजूद रखती हैं। ये सब इशारात हैं, ज़ाहिर है कि मैं किसी भी बहस को नतीजे तक नहीं पहुंचा रहा हूं। इशारात के मानी ये होते हैं कि आपके लिए एक इशारा कर दूं और आप उस पर तहकीक फरमाएं। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो और तुम्हारा रब बहुत करीम है, बड़ा साहिब करम है। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने तुम्हें एक कुव्वते तमीज़ के ज़रिए से इल्म अता किया, और वो इल्म अता किया जो तुम नहीं जानते थे। अल्लम अल इंसान मालम यालम, इंसान को वो बताया जो इंसान नहीं जानता था। यहाँ और मतालिब हैं जिसे छोड़कर अब एक और इशारा आगे करता हूँ। कल्ला इन्नल, अब ये दूसरी किस्त है वही की, कुछ दिनों के बाद ये वही आई। कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, हाय अल्लाह ने कुव्वते तमीज़ दी, इल्म अता किया, लेकिन ये इंसान वो है कि जो सरकशी करता है। रब्त क्या है, रब्त है या नहीं है? बेरब्त है कलाम, रब्त है। अल्लाह ने कुव्वते तमीज़ दी, अल्लाह ने इल्म अता किया, अल्लाह ने करम किया, और फिर ये इंसान सरकशी करता है। सरकशी गुरूर की इंतहा है। गुरूर और तकब्बुर असल क्या है? हक को बातिल कहना, बातिल को हक कहना। कुव्वते तमीज़ तो दी हमने, इस कुव्वते तमीज़ के होते हुए तुम अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा कहते हो, सच को झूठ, झूठ को सच कहते हो, हक को बातिल, बातिल को बात हक कहते हो। रब समझ में आई? कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, यहां पर एक ऐसे जाहिरी तफसीरी इशारा कर दूं कि लफ्ज़ कल्ला जो है ये इसका इस्तेमाल कुरान ने जिस बलागत से किया है, शायद पूरी अरबी जबान में इस बलागत से नहीं हुआ है। इस एक लफ्ज़ का, इस मुफरदा, इस एक लफ्ज़ का कल्ला, पूरे कुरान में लफ्ज़ कल्ला सिर्फ 33 बार आया है, 33 times ओनली, सिर्फ 33 मरतबा पूरे कुरान में ये लफ्ज़ आया है कल्ला। और जहाँ भी आया है ये एक लफ्ज़ नहीं है, इसके साथ पूरी एक इबारत है, यानी इस लफ्ज़ के पीछे एक इबारत है, इस लफ्ज़ के पीछे हर जगह एक मज़मून है। और 33 में से 3 बार तो इसी सूरे में आया है, कल्ला इन्नल इंसान लयत्गा अन रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिका रुजअ अरअयत अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अरअयत इन काना अलल हुदा औ अमर बित्तक्वा अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला अलम यअलम बिअन्न अल्लाह यरा कल्ला لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا। तो 3 मरतबा कल्ला इसी सूरे में आया। यहाँ पर बहुत मतालिब हैं, आखिरी फ़िक्रा मैंने पूरा नहीं पढ़ा इसलिए कि ये सजदा वाजिब हो जाता है इस आयत पर। और यहाँ पर ठहर कर फिर पलट के आते हैं, ये इंसान की सरकशी का तज़किरा कुरान में बार बार आया है। इंसान उमूमन सरकशी करता है। कहीं मैंने अर्ज किया था कि हर इंसान के अंदर एक फिरौन पोशीदा है, हर इंसान के अंदर एक नमरूद पोशीदा है, हर इंसान के अंदर एक शैतान पोशीदा है, हर इंसान के अंदर एक डोनाल्ड ट्रंप पोशीदा है। सरकशी, तुगयान, तकब्बुर, बदतरीन तकब्बुर। मैं अपनी गुफ्तगुओं को محدود رکھنا چاہتا ہوں علمی اور تعلیمی مطالب تک، لیکن دل کڑھتا ہے، دل میں ٹیس اٹھتی ہے اس وقت جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اور جس طرح کی زبان آج کے سیاستدان استعمال کر رہے ہیں، اور خاص طور سے ڈونلڈ ٹرمپ نے سیاست کو جس حد تک گرا دیا ہے، اور انسانیت کے ساتھ جس طرح مذاق ہو رہا ہے، مذاق بدترین مذاق، اور سرمایہ داری اور سرمایہ پرستی کیپیٹلزم، کیپیٹلزم کا مکروہ ترین چہرہ اس وقت دنیا کے سامنے ہے، جھوٹ فریب ظلم ستم شقاوت، یہ کورونا وبا عام تو ہے مگر اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو منصوبہ سازی کی گئی ہے وہ منصوبہ سازی انسان دوست منصوبہ سازی نہیں ہے، کیپیٹلسٹ دوست سرمایہ پرست دوست منصوبہ سازی ہے، دواؤں کی فراہمی، وسائل کی فراہمی، وینٹیلیٹرز کی فراہمی، ماسک کی فراہمی، دواؤں کی فراہمی، ارے میں ایران کا نام نہیں لوں گا، اٹلی جیسے ملک میں ایک ملک کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے مال سامان لوگوں کی بہبود کے لیے، اور دوسرا ملک آ کر اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، شقاوت، یہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے؟ ہمارا لاکھوں سلام ہو ایرانی قوم کو اور ایران کے عظیم الشان رہبر آیت اللہ العظمہ امام خامنئی کو، کہ ان مشکل حالات میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک کو کنٹرول کیا ہے اور کنٹرول کر رہے ہیں، اور وہ ثبوت دے رہے ہیں عملاً کہ مشکل ترین گھڑیوں ہی میں ساعتوں ہی میں قومیں ترقی کرتی ہیں، کس طرح اپنی مشکلات پہ قابو پاتی ہیں، اسی طرح ان کی صنعت و حرفت ترقی کرتی ہے، اس وقت تمام دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، انسان کی سرکشی، ذرا سعودیوں کی سرکشی دیکھیے، جھوٹ فریب، اور ساتھ میں یمن کے اوپر اس کورونا کے دور میں بھی ایک طرف اعلان کرتے ہیں کہ ہم جنگ بندی کر رہے ہیں، دوسری طرف بمبارٹمنٹ کا سلسلہ جاری ہے، بمبارٹمنٹ کا سلسلہ جاری ہے، رکا نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں کن کن سرحدوں کا اور کن کن ملکوں کا تذکرہ کیا جائے جہاں انسانوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، اور حکومتیں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے جنگ کا سہارا لے لیتی ہیں، انسان کی سرکشی کے نہ جانے کتنے رخ ہیں، کن کن پہلوؤں پر گفتگو کی جائے، کلا ان الانسان لیطغى، انسان سرکشی کرتا ہے، سیاسی سرکشی، اقتصادی سرکشی، جنگی سرکشی، کفر کی سرکشی، شرک کی سرکشی، اخلاقی سرکشی، کتنی سرکشیوں کا تذکرہ کیا جائے، سب ضروری ہے، کب سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنا، جب وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، دیکھتا ہے کہ میں تو مستغنی ہوں، میرے پاس مال بہت ہے یا میرے پاس اولاد بہت ہے، یعنی مال بھی ہے اور مین پاور بھی ہے، تو بس پھر تو انسان خدا کو بھول جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ ان الی ربک الرجعا، سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، ثابت یہ ہے حقیقت، کہ پلٹ کر تو تیرے رب ہی کی طرف جانا ہے، ان الی ربک الرجعا، اے مصطفیٰ سب کو تیرے رب کی طرف پلٹ کے آنا ہے، یہاں بھی ان الی ربک الرجعا ہے، काफ यहां भी है मुफरत हुजूर से खता, इन्ना इला रब्बे का रुजा। बस यकीनी बात यह है कि इंसान कितनी ही सरकशी करे पलट के उसे तेरे रब के पास आना है। उसके बाद कुछ मिसालें हैं, अरायत अल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला, क्या आपने देखा उस शख्स को, क्या आप देखते हैं उस शख्स को जो के मना करता है अगर कोई शख्स नमाज पढ़े, दुआ करे, अल्लाह से राबता करे, रिश्ता करे, हक सुबहान व तआला से रिश्ता बरकरार करे। अब यहाँ ज़ाहरी तफासीर में मौजूद है, तारीख़ के जुज़ी वाक़ियात की तरफ इशारा है कि वलीद इब्ने मुग़ीरा और बाज़ वाक़ियात में अबू जहल, जिसे उस वक्त अबुल हकम भी कहते थे, उसकी कुनियत थी, वो हुजूर अलैहिस्सलाम को सहन हरम में, मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ने से रोकते थे, ये लोग रोकना चाहते थे। और इज़्ज़त में एक मौजज़ा भी नकल किया जाता है, बहुत से हज़रात मौजज़ात नकल करने से गुरेज करते हैं, मैं हरगिज़ गुरेज नहीं करता, मैं मौजज़ात का कायल हूँ और हरगिज़ मौजज़ात का मुनकर नहीं हूँ। एक रिवायत ये भी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की नमाज का तज़किरा हो रहा था, आपके सजदों का तज़किरा हो रहा था, तो किसी ने अबू जहल से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज पढ़ते हैं, इस तरह अपने रब का के सामने सजदा करते हैं। तो अबू जहल ने कहा अगर मेरे सामने मोहम्मद इस तरह सर ज़मीन पर रखें सजदा करें तो नऊज़ु बिल्लाह मैं उनकी गर्दन पे अपना पांव रख दूंगा, वो इस तरह से उन्हें हलाक कर दूंगा या उनकी तोहीन करूंगा या उन्हें सजा दूंगा। उसके बाद लोगों ने कहा ये क्या सामने मोहम्मद सजदे में पड़े हुए, तो वो बढ़ा हुजूर की तरफ गुस्ताखी करने के लिए और उसके बाद उल्टे पांव इस तरह हाथ उठाकर वापस पलटना शुरू हुआ और उसके चेहरे का रंग बदल गया और जैसे मालूम होता था कि उसकी जान निकल जाएगी, रूह निकल जाएगी, और पीछे जाता रहा। बाद में लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहा मैं देख रहा था कि मेरे और मोहम्मद के दरमियान आग भड़क रही है, आग के शोले उठ रहे हैं और कुछ ऐसे खौफनाक चेहरे नज़र आ रहे थे कि मैं आगे बढ़ता तो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देते। यह है एहतमाम इलाही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चाहा तो इस तरह भी बचाया। वो जो मुश्किलें हैं वो अपनी जगह, जो जंगें हैं अपनी जगह, हुजूर जख्मी भी हुए वो अपनी जगह, ये जाहिर से लेकर बातिन तक एक दुनिया है जिसमें एक बहुत गहरा रब्त भी है और अपने अपने इम्तियाजात भी हैं। तो ये सब चीज़ें, इनमें से किसी चीज़ के इनकार करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का अपना महल है, हर चीज़ का अपना मौका है, हर चीज़ की अपनी मानवीयत है, हर चीज़ की का अपना एक रिलेवेंस है, हर चीज़ के अंदर इबरतें और नसीहतें और असबाक हैं पोशीदा। रायत अल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला, मेरा ख्याल है आज इस वक्त इतनी ही गुफ्तगू की जाए और बाकी हिस्सा सूरह का कल इंशाअल्लाह। परवरदिगार हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए कि हम कभी किब्र में मुब्तला ना हो, तकब्बुर में मुब्तला ना हो, सरकशी ना करें, तबीयत के तुगियान पर काबू पा लें और अपना सर सजदे खालिक में झुकाने का सलीका पैदा कर लें। परवरदिगार हमें नमाज व आदाब नमाज से आशना फरमा दें, हमारे क़याम और रुकू और सुजूद को कबूल फरमा दें। तुझे वास्ता है मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत का, जिन्होंने अपनी खून फैशानी और जान फैशानी के साथ तेरा जिक्र बुलंद किया और तेरे सामने सर अपना सजदे में झुकाया, नमाज कायम की। परवरदिगार हम सबको نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سجدہ گزاری کی توفیق عطا فرما، اور اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.